मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज फरवरी महीने का आखिरी दिन है, 28 फरवरी 2019, और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं आपसे राष्ट्रीय धर्म पर कुछ अपने थॉट्स शेयर करना चाह रहा हूं। राष्ट्रीय धर्म यानी कि राष्ट्र के प्रति हमारा धर्म और राष्ट्र के प्रति हमारा वह धर्म जो वर्तमान में राष्ट्र हमसे अपेक्षा कर रहा है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, अपनी ओर से और मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से, सच पूछिए तो हमारे जो पायलट विंग कमांडर अभिनंदन जी हैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा और उनके साहस को सलाम करता हूं। यदि कल आप लोगों ने एक जो वीडियो वायरल हुआ है वो देखेंगे तो पता लगेगा कि अभिनंदन के चेहरे पर कितनी चमक है। डर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, अफसोस तो दूर दराज तक नहीं है। जब आप उन्हें चलते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई शेर चल रहा हो, आप ध्यान से देखिए। और फिर जब मेजर उनसे कुछ प्रश्न करते हैं तो आप देखिए कि उन प्रश्नों का कितने खूबसूरती के साथ, कितने हिम्मत के साथ, और उन सबसे भी बड़ी बात यह कि कितने संतुलित तरीके से वह उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और उस उन उत्तरों में आपको स्वाभिमान की एक बहुत स्पष्ट झलक दिखाई देगी, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, जो समर्पण का भाव है वह दिखाई देगा, और जो उनका अपना कर्तव्य है उसके प्रति बोध तो अपने क्लाइमेक्स पर है, अपने चरम पर है। आप इस दृष्टि से उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सचमुच एक व्यक्ति भावनाओं के स्तर पर, कर्तव्य बोध के स्तर पर, साहस के स्तर पर अपने आप को किन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। आखिर ये ऊंचाइयां मिलती कैसे हैं? सीधी सी बात है, ये ऊंचाइयां मिलती हैं हमारी परवरिश से और ये ऊंचाइयां मिलती हैं हमारे प्रशिक्षण से। परवरिश की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से उनके पिता भी वायुसेना में रहे हैं, उनका भाई, उनके भाई भी हैं और उनकी पत्नी भी रही हैं। तो स्वाभाविक है कि उनका जो पूरा का पूरा वातावरण है वो कुछ इस तरीके का है जहां भय को तो बैठने के लिए या यूं कह लीजिए कि छुपने तक के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती होगी। तो ऐसे वातावरण में जिनकी परवरिश हो तो स्वाभाविक तौर पर, या कह लीजिए वंशानुगत तौर पर, या वातावरण के आधार पर अभयता उनमें घर कर जाती है। लेकिन जिन्हें इस तरह का वातावरण नहीं मिला, क्या उनके सामने कहीं कोई दूसरा चारा नहीं है? है मित्रों, वह है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है और कुछ से कुछ भी बना सकता है। और इसके प्रमाण के तौर पर अभी हम अभिनंदन, अपने कमांडर, अपने पायलट अभिनंदन को देख रहे हैं। और सच पूछे तो अभी अभिनंदन हमारे पूरे देश के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, भावनाओं के आधार हैं, और हमारा पूरा देश ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि अभिनंदन जल्दी से जल्दी पाकिस्तानी सेना के कब्जे से मुक्त होकर भारत आए और पूरा राष्ट्र खुले हृदय से उनका स्वागत करने के लिए आतुर है, व्याकुल है। तो दोस्तों, अभिनंदन ने जो कमाल दिखाया है और अभी भी जिस तरीके से वो प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं, एक बार फिर से मैं आप सभी की ओर से उनके इस साहस को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। फ्रेंड्स, देश अभी किस स्थिति में है आप जानते हैं। भारत और पाकिस्तान में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है, हमारी सेनाएं अपना काम कर रही हैं, हर वक्त अपने अपने काम में लगा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि हम सब जो नागरिक हैं, सामान्य नागरिक ही सही लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपने अपने काम हमें भी निर्धारित करने चाहिए कि इस अवसर पर राष्ट्रीय धर्म हमारा क्या बनता है। उसी के बारे में मैं दो चार बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, पहली बात तो यह कि जो छुटपुट घटनाएं पहले हुई थी और उसकी चर्चा मैंने पहले भी अब की है, वो ये कि हमें सबसे ज्यादा कोशिश इस बात की करनी है कि हमारी जो राष्ट्रीय एकता है, यानी कि जो आपस में हम एक हैं, वह एकता न केवल बनी ही रहे बल्कि पहले की तुलना से भी वह ज्यादा मजबूत बने, इतनी मजबूत बने कि सामने वाले दूसरे देश के लोग देखकर दंग रह जाएं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ठीक है आंतरिक रूप से मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं, और जब राष्ट्र पर कोई भी विपदा आएगी या राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न उठेगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता का सवाल उठेगा तो यह पूरा का पूरा देश एक साथ उठ खड़ा होगा। यह मैसेज पूरी दुनिया को बहुत आराम से, बहुत सीधे सीधे मुझे लगता है कि चला जाना चाहिए और वह देने में हम सब सक्षम हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो यह कि हमें न तो क्षेत्र के नाम पर कोई भी गलत कार्यवाही करनी है, कोई भी निगेटिव एक्शन लेना है कि ये उस क्षेत्र का रहने वाला है, और न ही धर्म के नाम पर। यहां न तो क्षेत्र है और न ही धर्म है, यहां जो दो हैं सीधे सीधे, एक है हिंदुस्तान और दूसरा है पाकिस्तान, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। हम एक हैं और वो एक केवल यह कि हम सब भारतीय हैं, और हमें अपने इस दायित्व को और इस धर्म को समझना ही होगा। और दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स, कि खासकर जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो कुछ ऐसे नकारात्मक तत्व होते हैं जो इन मौकों का फायदा उठाना चाहते हैं, और मौकों का फायदा उठाने के लिए वो अफवाहों को जन्म देते हैं। पता नहीं किस किस तरीके की अफवाहें उड़ाई जाती हैं, और खासकर अब जबकि आपके हाथ में पूरी दुनिया है तो व्हाट्सएप और पता नहीं किन किन सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो अनसोशल एलिमेंट हैं ये अफवाहों के बाजार को गर्म कर देते हैं। और ये अफवाहें कुछ इस तरीके की होती हैं कि देखने के बाद किसी भी सामान्य से व्यक्ति का दिमाग गर्म हो जाता है और खून उबलने लगता है। पहली बात ये जो दूसरे पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। अगर अफवाहें हैं तो या तो आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से चेक करें कि रियलिटी में क्या है, और चेक करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हम फिर उसको बिल्कुल उसके प्रतिरोध में आ जाएं, प्रतिशोध में आ जाएं, प्रतिरोध में आए प्रतिशोध में नहीं, हमें उन्हें रोकना होगा, फैलने से रोकना होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रतिकार करने के लिए हम तुरंत उठ खड़े हों, क्योंकि हो सकता है कि हमारा प्रतिकार हमारे अभी जो उद्देश्य हैं, जो बड़े उद्देश्य हैं, उनको कमजोर कर दे। तो इसीलिए दोस्तों, हमें उन अफवाहों पर भी कान नहीं देना है। मित्रों, एक कवि हुए हैं, मैथिली के कवि हुए हैं पद्मावत, शायद नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो ऋतुओं का वर्णन, बारामासी के वर्णन के तहत एक बड़ा खूबसूरत वर्णन करते हैं, गर्मी का वर्णन करते हैं, और एक वर्णन मिलता है कि खूब गर्मी पड़ रही है, पूरी धरती तप रही है, सूरज प्रचंड रूप में जल रहा है, और इतनी गर्मी पड़ रही है कि जो जंगल के पशु हैं वो बुरी तरह से व्याकुल हो गए हैं। और फिर उन्होंने एक दृश्य दिया है, और दृश्य ये दिया है कि इतनी गर्मी पड़ रही है कि उस धूप से बचने के लिए एक छायादार पेड़ के नीचे शेर भी है, सियार भी है, हिरण भी है, बकरी भी है, गाय भी है। इस तरह से उन्होंने कुछ जानवरों के नाम दिए हैं, यानी कि अब जबकि सबके सुरक्षा का सवाल है, बचने का सवाल है, अस्तित्व का सवाल है, तो सब अपने पारस्परिक वैर भाव को भुलाकर एक हो गए हैं, क्योंकि हम सबका अस्तित्व कहीं न कहीं एक ही है। तो दोस्तों, पद्मावत की वह जो उदाहरण है पद्मावत का, वो मुझे बहुत ही अपील करता है कि जरूरत पड़ने पर कैसे हमें अपने अस्तित्व को सर्वोपरि प्रधानता देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम भले ही सेना में नहीं हैं, हमारे भाई बंधु सेना में हैं, लेकिन हम भी एक नागरिक सैनिक हैं। नागरिक सैनिक होने के नाते वो हमारी सीमा पर देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, और हमें चाहिए कि हम आंतरिक सुरक्षा के दायित्व को निभाएं। और आंतरिक सुरक्षा के दायित्व को निभाने के दो तरीके हो हैं। पहला तो यह है कि हम कोई समस्या खड़ी न करें अपनी ओर से कि प्रशासन को उसमें लग जाना पड़े, बल्कि सच यह है कि प्रशासन को हर संभव अभी सहयोग करें। और दूसरा यह कि जहां भी इस तरह की कुछ जरूरतें पड़ती हैं, हम सब तैयार हैं, और अपने क्षेत्र के, अपने एरिया के, अपने मोहल्ले की शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी लें, ताकि देश एकजुट होकर अभी जो उसके सामने सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा दायित्व है, उसे अच्छे तरीके से निभा सके। तो मित्रों, मुझे लगता है कि मेरी बातों पर आप सब थोड़ा बहुत गौर करेंगे और उस पर अमल करने की दिशा में भी छोटा सा ही सही लेकिन एक कदम जरूर बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।